From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected...
ये सॉल्ट लेक टेंपल स्क्वायर से अंति 184वें मर्तादिक वार्षिक सम्मेलन है। इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ता संबोधन करें। इस सत्र का संगीत मार्मन गायक मंडली द्वारा होगा। इस प्रसारण बॉनीवेल ट्रस्टिविशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग उपवर्जित है।
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग गिरजे की प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 184वें अर्धवार्षिक महासम्मेलन के पांचवें सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो कि इस महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने कहा है कि मैं इस सत्र का संचालन करूं। हम विश्व भर में गिरजे के सदस्यों और मित्रों को शुभकामनाएं देते और स्वागत करते हैं जो इन कार्यों में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट उपग्रह प्रसारण भाग ले रहे हैं। इस सत्र का संगीत मंडप गायक मंडली द्वारा पैक विल्बर्ग के निर्देशन में होगा। रिन मर्फी, मोनी गॉडलिफ के साथ लिंडा मार्केट्स ऑर्गन बजाएंगे। गायक मंडली लो द माइटी गॉड अपीयरिंग गाकर सत्र को आरंभ करेंगी। आरंभिक प्रार्थना सत्र के एल्डर डेविड एफ एवंस करेंगे।
God. Our dear Father in heaven, as we come before
हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं इस सत्र के अंतिम कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र में आपके प्रार्थना करते हैं। हम अपनी गहन सौभाग्य आपके प्रतीत करते हैं जो निर्देशन हमें यहाँ पे सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पवित्र भविष्यवक्ता और उसके सलाहकार और 12 प्रेरितों के परिषद के और जो इन्होंने बोला है, हमने इसके लिए हमने बहुत प्रतीक्षा की है। पूरे हफ्ते हमने सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं परमेश्वर। हमारे जो विश्वास से मजबूत हों और हम अपने लोगों की सेवा कर सकें, हम चाहते हैं कि इस सत्र के दौरान हमें आपकी आशीष मिले और आपकी आत्मा के द्वारा हम सबको समझें और जो कुछ कहा जाता है हम उसको समझें और उसके अनुसार हम आगे बढ़ें। हम आपको जो भी बोलने वाले हैं उनको आप आशीष दीजिए ताकि हम उनकी बातों को सुन सकें और हमारे ऊपर आपकी आशीष हो। हम आप पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रवक्ता मानसून के स्वास्थ्य के लिए जो कुछ हैं। हम चाहते हैं आप उसको आशीष दें और उनके सलाहकारों को आशीष दें। हर परिस्थिति में उनके जीवन में उनकी आशीष दीजिए। हम इस सभा को आपके हाथों में देते हैं। हम ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, आमीन।
We will now be pleased to hear.
अब हमारा प्रेरितों के परिषद एल्डर एम रसल बैलट और एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट को सुनने का हमारा सौभाग्य होगा। उनके बाद एल्डर कार्लोस ए गोडोए सत्र के को सुनेंगे जो अपने संदेश अपनी मूल भाषा पोर्चुगीज में देंगे। अंग्रेजी उपशीर्षक सम्मेलन केंद्र की स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
Recently, a friend of mine took his son on a trip down.
हाल ही में मेरे एक मित्र अपने पुत्र को कोलोराडो नदी के कैटरेट गट घाटी दक्षिण यूटा में स्थित यात्रा के लिए लेकर गए। यह घाटी प्रसिद्ध है मील एक के सफेद पानी की शीघ्र बहती धारा जो कि विशेष रूप में खतरनाक हो सकती है। अपने इस साहसिक कार्य की तैयारी के लिए उन्होंने ध्यान से नेशनल पार्क के वेज पैज की समीक्षा कि जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी थी निजी तैयारी और आम छुपे हुए खतरों के। यात्रा की शुरुआत में एक अनुभवी नदी के गाइड ने महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश की समीक्षा की। तीन महत्वपूर्ण नियमों पर जोर डालते हुए जो कि शीघ्र बहती धारा में से झुंड की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करते। पहला नियम, नाव में रहो। दूसरा नियम, हमेशा जीवन जैकेट पहन के रखें। तीसरा नियम, हमेशा दोनों हाथों से पकड़ें। फिर उनसे फिर से कहा और फिर जोर देते हुए कहा, हर एक से ऊपर पहला नियम याद रखें, नाव में रहो। यह साहसिक कार्य मुझे याद दिलाता है हमारी यह सांसारिक यात्रा। हम में से बहुत से अपने जीवन में अवधि अनुभव करते हैं जहां जीवन के शांत जल को सहारा जाता है और दूसरे समय हम सफेद पानी की शीघ्र बहती धारा का सामना करते हैं जो कि लक्षण में पाए जाने वाले उन मील 14 मील कैरेट घाटी के तुलनीय है। चुनौती जिनमें शारीरिक और दिमागी स्वास्थ्य के मामले शीघ्र शामिल हों, प्रिय जन की मृत्यु, टूटे सपने और आशाएं और कुछ के लिए विश्वास की कमी, जब जीवन के संघर्ष, प्रश्नों और शक का सामना करना हो। प्रभु ने अपनी अच्छाई से मदद प्रदान की है जिसमें एक नाव शामिल है, आवश्यक आपूर्ति जैसे कि जीवन जैकेट और अनुभवी नदी का गाइड जो कि मार्गदर्शन और सुरक्षा निर्देश से हमारी मदद करता है जीवन की नदी से नीचे से लेकर आखिरी रक्षे तक जाने में। आओ पहले नियम के बारे में सोचते हैं, नाव में रहो। अध्यक्ष ब्रिगम यंग ने साधारणतः एक पुराना जहाज सियोन अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे के रूपक लगाया। उन्होंने एक अवसर पर कहा, हम सब एक महासागर के बीच हैं, एक तूफान आता है और जैसे कि नाविक कहते हैं वह बहुत मेहनत करती है, एक कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह सियोन जहाज है, परंतु हम सब महासागर के बीच में हैं। मैं परवाह नहीं कर सकता, मैं यह नहीं रहूंगा, कोट को फैलाता है और बाहर कूद जाता है, क्या वह डूबेगा नहीं? हाँ, तो जो गिरजा को छोड़ते हैं यह वह पुराना जहाज सियोन है, इसमें ही रहो। और एक अवसर पर अध्यक्ष यांग ने कहा कि वह चिंतित हैं उन लोगों के मार्ग में खो जाने के लिए जिन्हें आशीष प्राप्त हो रही थी जब जीवन अच्छा था। यह शांत मौसम में जब पुराना जहाज सियोन का तैर रहा है ठंडी हवाओं के साथ और जब छत पर सब शांत है, कुछ भाई नाव में तैरने जाते हैं और कुछ डूब जाते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं और कुछ वापस जहाज पर आ जाते हैं। पुराने जहाज पर ही हमें चिपके रहने दो और वह हमें किनारे पर सुरक्षित ले जाएगी, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और अंत में अध्यक्ष यांग ने संतों को याद दिलाया, हम सियोन के पुराने जहाज पर हैं, परमेश्वर पतवार पर है और हमेशा वहीं रहेगा, सब यहीं हैं, हालेलुया गाओ, क्योंकि प्रभु यहाँ है। वह आदेश मार्गदर्शक और निर्देश करता है। यदि लोगों का अंतर्निहित आत्मविश्वास अपने प्रभु में होगा, कभी अपने अनुबंधों और अपने प्रभु को ना त्यागोगे, वह हमारा सही संचालन करेगा। दी गई चुनौतियां जिनका हम आज सामना करते हैं, कैसे हम पुराने सियोन के जहाज पर रह सकते हैं, यहाँ है कैसे। हमें अनुभव करना होगा एक निरंतर परिवर्तन, यीशु मसीह में अपने विश्वास को बढ़ाकर और जीवन भर उसके सुसमाचार के दृढ़ रहकर, केवल एक बार नहीं परंतु नियमित रूप से। आलमा से पूछो और देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अनुभवी नदी के गाइड आज गिरजाघर के प्रेरितों और भविष्यवक्ता और प्रेरित पुरोहित्य के और सहायक अध्यक्ष के समान, वह हमारे आखिरी लक्ष्य को सुरक्षित पहुंचाने के हैं। हाल ही में मिशन की आंखों के को गिरजाघर के अध्यक्षों पर रखो, हम नहीं और कभी हमको गुमराह नहीं कर सकते। हाल ही में मैंने नए मिशन अध्यक्षों के सेमिनार में बोला और अध्यक्षों को सलाह दी, मिशन की आंखों के गिरजाघर के अध्यक्षों पर रखो, हम नहीं और कभी आपको गुमराह नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपने प्रचारक को सिखाते हैं, अपनी आंखों को हम पर केंद्र रखना, उन्हें सिखाओ कभी उनका अनुसरण ना करें जो यह सोचते हैं कि वह गिरजाघर के काम काज के प्रबंध में ज्यादा जानते हैं। स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह में से पुरोहित अध्यक्ष द्वारा जिनके पास कुंजियां हैं काम करने की, मैंने खोज कर अपने पद में पाया है कि जो खोज गए हैं यह उलझे हुए हैं, विशेष रूप में से वह जो अक्सर भूल जाते हैं कि जब प्रथम अध्यक्षता और 12 प्रतिशत बोलते हैं तो वह एक स्वर में बोलते हैं, वह उस समय के लिए प्रभु की आवाज है। प्रभु हमें याद दिलाता है, चाहे मेरी आवाज या मेरे सेवकों की आवाज, वह एक है। दूसरे शब्दों में, वह पुराने सियोन के जहाज को छोड़ जाते हैं, वह गिर जाते हैं परंतु विरुद्ध हो जाते हैं। दुर्भाग्य से वह अक्सर अनुभव करते हैं कुछ समय और बाद में लंबे समय के लिए, केवल अपने लिए नहीं परंतु अपने परिवारों के लिए अनियमित परिणाम। हमारे लोकल गिरजाघर के अध्यक्ष नदी के गाइड की तरह जीवन के अनुभवों से सीखे हैं, प्रशिक्षित और सलाहकार प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं और गिरजे के दूसरे अध्यक्षों द्वारा और सबसे आवश्यक खुद प्रभु से सिखाए गए हैं। एक और अवसर पर इस साल मैं गिरजाघर के युवा प्रौढ़ में CS डिवोशनल ब्रॉडकास्ट में बोला। मैंने सुना है कुछ लोग सोचते हैं कि गिरजाघर के अध्यक्ष बुलबुले में रहते हैं, वह यह भूल जाते हैं कि हम अनुभव के स्त्री पुरुष हैं और हम अपना जीवन इतनी सारी जगहों पर जिए हैं और विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम किया है। हमारा कभी अभी का कार्य हमें दुनिया भर में ले जाता है, जहां हम दुनिया के राजनीतिक, धार्मिक, व्यापार और मानव जाति के अध्यक्षों से मिलते हैं। जबकि हम व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन DC में अध्यक्षों को और विश्व भर के देशों के अध्यक्षों से मिले हैं, हम इस धरती पर सबसे विनम्र परिवारों और लोगों से भी मिले हैं। जब आप विचार मगन होकर हमारे जीवन और आप अधिकतर से कि हम देखते और अनुभव करते हैं इस संसार को उसी प्रकार से जैसे कुछ और करते हैं, आप जानोगे कि हम थोड़ा कम बुलबुले का जीवन जीते हैं दूसरे से। कुछ तो है एक व्यक्ति को इकट्ठा ज्ञान गिरजे के अध्यक्ष जो कि सबको कुछ आराम देता है। हमने भिन्न भिन्न जन कानून और नीति, निराशा, त्रासदी और अपने परिवारों में मृत्यु सब अनुभव किया है। हम आपके परिवार से अछुए नहीं हैं। पहले नियम के साथ जैसे मैंने आवेदन किया है, याद रखें दूसरा और तीसरा नियम, हमेशा जीवन जैकेट पहने और अपने दोनों हाथों से पकड़ें। प्रभु का वचन जैसे कि धर्मशास्त्र में पाया जाता है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सीख हमें सलीह और मार्गदर्शन कराते हैं। जब अनुसरण करें, कार्य करें, आत्मिक जीवन जैकेट की तरह और हमारी मदद करेगा जानने की दोनों हाथों से कैसे पकड़ा जाता है। हमें मुसाया के पुत्रों के जैसा बनना है जिन्होंने मोम या मजबूत किया ज्ञान को सच्चाई में। हम एक समझ के सुनने का स्त्री और पुरुष बन सकते हैं, यह पूरा किया जा सकता है। धर्मशास्त्र को परिश्रम से खोजकर ताकि हम परमेश्वर के वचन को जान सकें। धर्मशास्त्र के ढूंढने में और कल के शब्दों पर जो और आज के प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के हमें केंद्र करना चाहिए पढ़ने, जीने और मसीह के सिद्धांत को प्रेम करने में। इस संकलन में हमें विकसित करें निजी धर्मशास्त्र को पढ़ने की आदत। हमें मुसाया के पुत्रों के जैसे बनना है और अपने आप को बहुत सी प्रार्थना और उपवास को दें। ऐसा लगता है कि यह वस्तुओं आसानी से नहीं नापी नहीं जा सकती जिनका महत्व होता है। अपना ध्यान इस नदी वस्तु पर केंद्रित करें और दूर रहें भंग होने से। जैसा कि मैंने उन लोगों को जाना है जो नाव में नहीं रहे और दोनों हाथों से नहीं पकड़ा परीक्षण और दुख, या जो नाव में शांति और दौरान नहीं रहे। मैंने देखा है कि उनमें से अधिक ने ध्यान सुसमाचार की केंद्रित सच्चाई को खो दिया है उन वजहों से कि पहले स्थान में वह गिरजे में क्यों सम्मिलित हुए। वह जिससे कि वह पूरी तरह से समर्पित और सक्रिय रहे जीवन जीवित सुसमाचार के दर्जे में और दूसरों को आशीषित किया समक सेवा में, और जिस तरह से गिरजाघर उनके जीवन के एक स्थान है आत्मिक पोषण और बढ़ाने का। जोसेफ स्मिथ ने यह प्रमुख सच सिखाया, हमारे धर्म का मुख्य सिद्धांत प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को यीशु मसीह के प्रति गवाही है कि वह मारा, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में चढ़ा, और बाकी सब वस्तुओं उपंग है जो हमारे धर्म के प्रति हैं। यदि हम अपना ध्यान प्रभु पर रखें तो हमसे तुलना कि पार आशीषों का वादा किया गया है। इसलिए तुम मसीह में दृढ़ता से विश्वास करते हुए आशा की परिपूर्ण चमक और परमेश्वर और सभी मनुष्य से प्रेम करते हुए हमेशा आगे बढ़ते चलो। इसलिए यदि तुम मसीह की वाणी का प्याला पीते हुए और अंत तक धीरज रखते हुए आगे बढ़ते रहोगे, सुनो, पिता इस प्रकार कहता है, तुम अनंत जीवन मिलेगा। कभी कभी अंतिम दिनों के संत और ईमानदार अन्वेषक उपांग पर ध्यान देते हैं। मुख्य सिद्धांत को छोड़ यह वह है जब शैतान हमें भंग करना चाहता है। सीधे और साफ पुनः स्थापित सुसमाचार के संदेश से जो बहुत भंग हो जाते हैं, वे अक्सर प्रभु भोज का सावन त्याग देते हैं, क्योंकि वे केंद्रित हो जाते हैं और वे बरसते कुछ कम महत्वपूर्ण अभ्यास और सीख के दूसरे ध्यान देते हैं उन प्रश्नों और शक की ओर जो उन्हें अनुभव किए होते हैं। अवश्य प्रश्नों का होने और शक को अनुभव करना अयोग्य नहीं है। समर्पित विश्वविद्यालय हाल ही में प्रथम अध्यक्ष और 12 की परिषद ने कहा, हम समझते हैं कि समय पर समय गिरजा के सदस्यों के पास प्रश्न होंगे गिरजा के सिद्धांत, इतिहास और अभ्यास के विषय में। सदस्य हमेशा ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आग्रह पूर्वक अधिक समझ को पा सकते हैं। याद रखो, जोसेफ स्मिथ के खुद के पास प्रश्न थे जो कि पुनः स्थापन से शुरू हुए। वह एक खोजी थे और अब्राहम की तरह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाए। महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान देते कि क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, स्वर्गीय पिता की योजना और उद्धारकर्ता का प्रायश्चित। हमारी खोज को हमें कृपा सुशील प्रेम पूर्ण क्षमाशील धैर्य और समर्पित शिष्यत्व की ओर ले जाना चाहिए। इसके हमें इच्छुक होना चाहिए जैसा पाला ने सिखाया, एक दूसरे के बोझ को उठाइए और मसीह के नियम को पूरा करें। एक दूसरे के बोझ में सम्मिलित है मदद करना, सहारा देना और हर एक को समझाना। बीमार आत्मा और शरीर से टूटे हुए खोजी और सताए हुए के सहित और दूसरे सदस्य जिनमें सम्मिलित है गिरजा के अध्यक्ष जो कि प्रभु की सेवा के लिए हर काल में बुलाए गए हैं। भाइयों और बहनों, नाव में रहो, अपनी जीवन जैकेट का प्रयोग करो, दोनों हाथों से पकड़े और नदी, यदि कोई नाव से बाहर गिर जा गया है, हम आपको खोजेंगे, ढूंढेंगे और सिखाकर वापस खींच लेंगे पुराने सियोन के जहाज पर, जहाँ पर परमेश्वर हमारा पिता और प्रभु यीशु मसीह पतवार है। वह हमारा सही संचालन करेगा, जिसकी मैं साक्षी देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
When Adam and Eve were in the Garden of Eden,
जब आदम और हवा आदम की वाटिका में थे, उन्हें प्रत्येक दिन की सुविधाएं अधिक मात्रा में दी गई थी। उन्हें कोई मुश्किलें, चुनौतियां या दर्द नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई मुश्किल समय अनुभव नहीं किया था। उन्हें पता नहीं था कि वे खुश रह सकते थे। उन्होंने कभी दुख नहीं सहा तो उन्हें शांति का एहसास नहीं था। आखिरकार आदम और हवा ने अच्छे और बुरे ज्ञान के पेड़ का फल न खाने की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ऐसा करने से वे मासूमियत की स्थिति में नहीं रहे। वे सिद्धांतों का विरोध अनुभव करने लगे। आदम और हवा के निषिद्ध फल का सेवन करने से अच्छाई और बुराई के ज्ञान का संसार में परिचय हुआ। उनके चुनाव ने संभव किया कि हम सब इस धरती पर आजमाए जाएं। हम आशीषित हैं चुनाव के, जो कि हमारी क्षमता है निर्णय लेने की और उन निर्णयों के लिए जिम्मेदार होने की। पतन ने हमारे जीवन में खुशी और उदासी दोनों का संभव किया।
We are able to understand peace.
हम समझ सकते हैं शांति को, क्योंकि हम दुख को महसूस करते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता जानता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। ये सब उसकी खुशी की उत्तम योजना का हिस्सा है। उसने मार्ग तैयार किया अपने उत्तम आज्ञाकारी पुत्र यीशु मसीह उद्धारकर्ता के जीवन से, उसके प्रायश्चित से हर तरह की मुश्किल को पराजित करने के लिए, जो हम इस धरती पर अनुभव करेंगे। हम तनावपूर्ण समय में रह रहे हैं। मुझे संसार की बुराई के सूत्र की सूची नहीं चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि हम की हर संभव चुनौती और मनोयथा, जो इस जीवन का हिस्सा है, का वर्णन हो। हम में से हर एक परिचित है अपने लालच, दर्द और उदासी की लड़ाई से। हमें पूर्व पृथ्वी में सिखाया गया था कि हमारा इस संसार में आने का उद्देश्य परीक्षित, परखा और खींचा जाना है। हम जानते थे कि हम दुष्टता के विरोधी को देखेंगे। कभी कभी हमें महसूस होगा कि हम ज्यादा जागरूक हैं इस जीवन के नकारात्मक वस्तुओं की अपेक्षा हमारी सकारात्मक के। भविष्यवक्ता लेही ने सिखाया कि ऐसा हो कि हर वस्तु में प्रतिरोध हो। हमारे जीवन में नकारात्मक चुनौतियां होने के बावजूद हमें अपने विश्वास का सक्रिय रूप से प्रशिक्षण करने के लिए समय निकालना चाहिए। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें साधन दिए हैं हमारी मदद के लिए, ताकि हम मसीह में आए और विश्वास का प्रशिक्षण उसके प्रायश्चित में कर सके। जब ये साधन मूल आदत बन जाते हैं, ये आसानी से मार्ग प्रदान करते हैं शांति को नश्वरता की चुनौतियों में पाने का। आज मैंने विचार करने के लिए चार साधन चुने हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं, गौर करें, हर साधन का मूल्यांकन अपने निजी इस्तेमाल में करें, फिर ढूंढें प्रभु के निर्देशन में निर्धारण करें किस तरह से आप हर एक को का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला साधन प्रार्थना है। अपने स्वर्गीय पिता से अक्सर बात करने को चुने। समय निकालो हर रोज उसके साथ अपने विचार और भावनाओं को बांटने का। उसे सब कुछ बताओ जो तुम्हें चिंतित करता है। वह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे साधारण पहलू में रुचि रखता है। उसके साथ अपनी भावना और अपने अनुभवों का विस्तार से बांटे, क्योंकि वह आपके चुनाव का सम्मान करता है। स्वर्गीय पिता कभी भी आपको उनसे प्रार्थना करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, परंतु जैसे ही आप चुनाव का प्रशिक्षण करेंगे और उसे अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करोगे, आपका मन प्रफुल्लित शांति से भरने लगेगा। वह शांति एक अनंत प्रकाश केंद्रित करेगी आपके अपने संघर्ष पर। वह मदद करेगी आपकी चुनौतियों को एक अनंत दृष्टिकोण से नियंत्रित कर। माता पिता अपने बच्चों की रक्षा, मदद सुबह और रात, पारिवारिक प्रार्थना के शस्त्र की शक्ति से करें। बच्चों को प्रतिदिन बुराइयों से के लाभ, लालच, घमंड और अन्य पापों के आचरण के समूह से भर दिया जाता है। अपने बच्चों को बचाओ नकारात्मक सांसारिक प्रभाव से, सशक्त करो शक्तिशाली आशीषों से, जो पारिवारिक प्रार्थना का परिणाम है। पारिवारिक प्रार्थना आपके जीवन में एक अपर क्रम्य प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा साधन परमेश्वर के वचन को धर्मशास्त्र में और जीवित भविष्यवक्ता के वचन को पढ़ना है। हम परमेश्वर की प्रार्थना के माध्यम से बात करते हैं। वे अक्सर अपने लिखे हुए वचन से बात करता है। ये जानने के लिए कि ईश्वरीय आवाज की ध्वनि कैसी महसूस होती है, उसके वचन को पढ़ें। धर्मशास्त्र का अध्ययन करो और उसका विचार करो। इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा बनाओ। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पहचाने, समझे और कार्य पवित्र आत्मा की प्रेरणा से करें, तो आपको उनके साथ धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए। शैतान के झूठ के आगे मत झुको कि धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। समय चुनो उन्हें पढ़ने के लिए। हर दिन परमेश्वर के वचन का बोझ करना, नींद, स्कूल, कार्य, टेलीविजन के शो, वीडियो के खेल या सोशल मीडिया से आवश्यक है। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय निकालने के लिए अपनी प्राथमिकता को पूर्ण संगठित करना होगा। यदि है तो करो। प्रतिदिन धर्मशास्त्र पढ़ने का बहुत सी आशीषों का भविष्य सूचक वादा है। मैं अपनी आवाज इस वादे में साथ जोड़ता हूं कि जैसे कि आप प्रतिदिन समय समर्पित करते हैं निजी और अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, आपके जीवन में शांति प्रचालित होगी। यह शांति बाहर के संसार से नहीं आएगी। शांति आपके घर में से आएगी, आपके परिवार से, आपके अपने मन से। यह पवित्र आत्मा का तोहफा होगा। ये आपके अंदर से फैलेगा दूसरों को संसार में प्रभावित करने के लिए। आप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कर रहे होंगे संसार में शांति को डाल इकट्ठा करने में। मैं ये घोषित नहीं करता कि आपके जीवन में चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। याद रहे, जब आदम और हवा वाटिका में थे, वह चुनौतियों से मुक्त थे और फिर भी उन्हें खुशी, आनंद और शांति का अनुभव नहीं था। चुनौतियां एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नाश्वरता का। प्रतिदिन धर्मशास्त्र का अध्ययन करने से आपको अपने चारों तरफ की हलचल में शांति प्राप्त होगी और शक्ति मिलेगी लालच का प्रतिरोध करने में। आप परमेश्वर की करुणा में दृढ़ विश्वास विकसित करोगे और जानोगे कि यीशु मसीह के बलिदान के कारण से सब सही कर दिया जाएगा परमेश्वर के समय अनुसार। जबकि आप कार्य कर रहे हैं अपने परिवार को मजबूत करने का और शांति विकसित करने का, याद रहे ये तीसरा साधन हफ्ते दर पारिवारिक घरेलू संध्या है। ध्यान रहे, अपनी पारिवारिक घरेलू संध्या को केवल एक व्यस्त दिन का अनुबोध ना बनाएं। निश्चित कर लें कि सोमवार रात को आपका परिवार घर पर संध्या में इकट्ठा होगा। नौकरी की मांग, खेल कूद, गृह कार्य या और कुछ को अपने परिवार के साथ घर पर इकट्ठा होकर बिताए समय से ज्यादा अधिक महत्व ना दें। आपकी संध्या का स्वरूप इतना अहम नहीं है जितना कि इसमें समय निवेशित। सुसमाचार को दोनों तरह से सिखाया जाना चाहिए, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से। यह परिवार के हर सदस्य के लिए एक अर्थपूर्ण अनुभव होना चाहिए। पारिवारिक घरेलू संध्या एक मूल्यवान समय है एक सुरक्षित वातावरण में अपनी साक्षी देने का, पढ़ाना, योजनाओं और संगठन योग्यता सिखाने का, परिवार के रिश्ते मजबूत करने का, परिवार की परंपरा को विकसित करने का, एक दूसरे से बात करने का, और सबसे महत्वपूर्ण खुशी मनाओ। पिछली अप्रैल में जनरल सम्मेलन के बहन लिंडा एस रीव्स ने निर्भीकता से घोषित किया, मैं प्रतिदिन धर्मशास्त्र अध्ययन, प्रार्थना और हर हफ्ते पारिवारिक घरेलू संध्या की आशीषों की साक्षी देती हूँ। ये वह अभ्यास है जो कि तनाव दूर करने में मदद करते हैं, हमारे जीवन को निर्देश देती है और सुरक्षा प्रदान करती है हमारे जीवन को। बहन रिव्स एक बुद्धिमानी स्त्री है। मैं दृढ़ता से आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप खुद से अपनी गवाही प्राप्त करें इन तीन अत्यंत महत्वपूर्ण आदतों की। चौथा साधन मंदिर जाना है। हम सब जानते हैं कि इस धरती पर परमेश्वर के मंदिरों से अधिक शांति का स्थान और कोई नहीं है। यदि आपके पास मंदिर संस्तुति नहीं है, योग्य बनो एक पाने के। जब आपके पास संस्तुति है उसका अक्सर प्रयोग करो। मंदिर में होने का एक सामान्य समय निश्चित कर लो। किसी को या किसी चीज को आपको वहां होने से ना रोके। जब आप मंदिर में हो, धन विधि के वचनों को सुनो, विचार करो, इनके लिए प्रार्थना करो और खोजो उनके अर्थ को समझने के लिए। मंदिर एक सबसे उत्तम स्थान है यीशु मसीह के प्रायश्चित की शक्ति को समझने के लिए। उसे वहां ढूंढो। याद रहे, बहुत सी आशीषें अपने परिवार के नाम मंदिर में प्रदान करने से आती हैं। यह चार साधन प्रमुख आदतें जीवन को सुरक्षित करने के लिए यीशु मसीह के प्रायश्चित की शक्ति में। याद रहे, हमारा उद्धारकर्ता शांति का राजकुमार है। नश्वर जीवन में शांति उसके प्रायश्चित के बलिदान से आती है। जब हम लगातार सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं, धर्मशास्त्र को हर रोज पढ़ते हैं, हर हफ्ते पारिवारिक घरेलू संध्या करते हैं और मंदिर नियमित रूप से जाते हैं, हम सक्रिय रूप से उसके निमंत्रण मेरे पास आओ का जवाब देते हैं। जितना अधिक हम इन आदतों को, उतना ही शैतान उत्सुक होता है हमें क्षति पहुंचाने के लिए, परंतु ऐसा करने में उसकी क्षमता कम हो जाती है। साधनों के इस्तेमाल से हम प्रयोग करते हैं अपने चुनाव से उसके प्रायश्चित के बलिदान के संपूर्ण उपहारों को स्वीकार करके। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा कि आपके जीवन में संघर्ष गायब हो जाएगा यदि आप ये सब करेंगे। हम आए नश्वर जीवन में संक्षेप में परीक्षण और अजमाए जाने से बढ़ने के लिए। चुनौतियां हमारी मदद करती हैं स्वर्गीय पिता जैसे बनने में, और यीशु मसीह का प्रायश्चित संभव करता है उन चुनौतियों को सहने का। मैं साक्षी देता हूं कि जैसे कि हम उसके पास आते हैं, हम सहेंगे हर प्रलोभन को, हर दर्द, हर चुनौती को जिसका हम सामना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
क्या सौभाग्य है इस ऐतिहासिक क्षण का भाग होने का जब हम जनरल सम्मेलन के अध्यक्ष के पास अपनी मूल भाषा में बोलने का विकल्प है। पहली बार जब मैं बोला था मंच में, मैं चिंतित था अपने अंग्रेजी उच्चारण को लेकर। अब मैं चिंतित हूँ परतोजी में अपनी तेजी को लेकर। मैं उपशीर्षकों से जल्द नहीं बोलना चाहता। हम सब ने अनुभव किया है या फिर अभी अनुभव करेंगे अपने जीवन के बड़े निर्णयों के लक्ष्य। क्या मुझे यह पेश चुनना चाहिए या कुछ और? क्या मुझे मिशन पर जाना चाहिए? क्या यह सही व्यक्ति है शादी करने के लिए? ये परिस्थिति है हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें कि एक छोटा सा मार्ग में बदलाव महत्वपूर्ण भविष्य के परिणाम ला सकता है। अध्यक्ष डिटेर उपडॉक ने शब्दों में, प्रभु की वर्षों से सेवा करते हुए मैंने सीखा है, अंतर खुशी और दुखमय व्यक्ति के व्यवहार में और परिवारों में जो कि कुछ श्रेणी की गलतियों से नीचे आ जाता है। हम किस तरह से ये छोटी गलतियों को आंकलन में बदल सकते हैं? मैं एक निजी अनुभव का इस्तेमाल करूंगा अपने संदेश को स्पष्ट करने के लिए। अंत में हमारे छोटा सा परिवार, मेरी पत्नी मोनिका, हमारे चार में से दो बच्चे और मुझसे बना हुआ था। हम ब्राजील में रह रहे थे। मैं एक अच्छी कंपनी के लिए काम करता था। मैंने अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई खत्म की और हाल में ही जहां हम रहते थे उसे वार्ड के विश्व पद से सेवामुक्त हुआ था। जीवन अच्छा था और सब वैसा ही लग रहा था जैसा था जब तक कि एक दिन का पुराना मित्र हमसे मिलने आया। जाने के समय में उसने एक टिप्पणी दी और मुझसे उसने पूछा, उसने कहा, कार्लोस, सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा चल रहा है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा काम और तुम्हारे गिरजाघर में सेवा, परंतु फिर वहाँ प्रश्न आया, यदि तुम निरंतर ऐसे ही जिए जैसे तुम जी रहे हो, क्या कुलपति के आशीर्वाद का वादा की गई आशीषें पूरी होंगी? मैंने कभी अपने कुलपति के आशीषों के बारे में नहीं सोचा था। मैंने उसे समय समय पर पढ़ा था, परंतु उसे कभी भी किसी वादा की गई आशीष की नजर से नहीं देखा था और न मूल्यांकन से आज मैं किस कैसे रह रहा था। उसके जाने के बाद मैंने अपना ध्यान कुलपति के आशीर्वाद की और किया, सोचते हुए यदि हम निरंतर ऐसे ही जिए जैसे हम जी रहे हैं, क्या वादा की गई आशीषें पूरी होंगी? कुछ क्षण विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है, विशेष रूप से मेरी शिक्षा और काम में। कि निर्णय सही और गलत के बीच नहीं था, परंतु क्या अच्छा और क्या बेहतर है बीच का था। जैसे कि ऑर्स ने सिखाया, जब उन्होंने कहा, जैसे कि हम अपने बहुत से चुनावों को गौर करते हैं, यदि याद रखना चाहिए कि ये काफी नहीं है कि कुछ अच्छा है, दूसरे चुनाव बेहतर हो सकते हैं और कुछ भी सबसे अच्छे हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि हम सबसे अच्छा निर्णय कैसे ले रहे हैं? ये कुछ सिद्धांत है जो मैंने सीखे हैं। सिद्धांत एक, हमें विचार करना है अपने विकल्पों पर अंत को अपनी सोच में रखकर। निर्णय लेना हमारे जीवन और हमारे प्रेम करते हैं और परमेश्वर बिना किसी दिव्य दर्शन के इसके परिणाम कुछ विपत्ति ला सकते हैं। ये समझना कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, ये प्रभु हमारे लिए जीवन में चाहता है, क्या एक व्यापक दिव्य दर्शन देगा कि हमें किस तरह की आवश्यकता है? हम उदाहरण पा सकते हैं धर्मशास्त्र में किस तरह की व्यापक दिव्यदर्शी से सफाई होती है। मूसा ने प्रभु में सामने बात की, उद्धारकर्ता की योजना के बारे में सिखाया और तब से अपनी उसने भविष्यवक्ता की भूमिका को बेहतर समझा इसराइल को इकट्ठा करने में। और प्रभु ने मूसा से कहा, देखो मैं शक्तिशाली प्रभु हूँ और मैं तुम्हें अपने हाथों की कारीगरी दिखाऊंगा और मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, मूसा मेरे पुत्र। इस समझ के साथ मूसा वर्षों तक रेगिस्तान में दर्द सहता रहा और इसराइल को वापस ला सका। लेही मॉर्मन की पुस्तक का एक महान भविष्यवक्ता हुआ, सपने का सामना देखा और दिव्य दर्शन में सीखा अपने परिवार को एक वादा किए हुए देश में ले जाने को। और ऐसा हुआ कि प्रभु ने हमारे पिता को आज्ञा दी एक स्वप्न में कि वह अपने परिवार को लेकर जंगल में चला जाए और उसने घर छोड़ दिया और अपने पूर्वजों की जमीन और अपना सोना और अपनी चांदी और अपनी कीमती वस्तुएं। लेही अपने दिव्य दर्शन के प्रति वफादार था। उसकी अपेक्षा, उसकी यात्रा की मुश्किलें और उसे पीछे छोड़ना पूरा एक आरामदायक जीवन। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ एक महान उदाहरण है। बहुत सारी प्रतिकरण से पहला दिव्य दर्शन वह अपने सारी वस्तुओं को पुनः स्थापित कर सके। और हमारा क्या प्रभु हम में से हर एक से क्या उम्मीद करता है? हमें दूत को देखने की आवश्यकता नहीं है समझ पाने के लिए। हमारे पास धर्मशास्त्र, मंजीर, जीवित भविष्यवक्ता, हमारी कुलपति का आशीर्वाद, प्रेरित अध्यक्ष और सबसे ऊपर हक निजी प्रतिकरण प्राप्त करने का जो हमारे निर्णयों को मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धांत नंबर एक, दो, हमें हमें तैयार रहना है उन चुनौतियों के लिए जो आएंगी। जीवन के सबसे अच्छे मार्ग कम ही आसान होते हैं, अक्सर इसका उल्टा होता है। हम भविष्यवक्ताओं के उदाहरण देकर देख सकते हैं जिनकी मैंने चर्चा की। मूसा, लेही और जोसेफ स्मिथ की यात्रा आसान नहीं थी, इसके बावजूद कि उनके निर्णय सही थे। क्या हम अपने निर्णय को मूल चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आराम को छोड़कर एक बेहतर स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं? मेरे अनुभव पर वापस आते हुए मेरे साथ कुलपति का आशीर्वाद, मैं इस निश्चय पर आया कि उस समय मुझे उच्च शिक्षा की आवश्यकता थी और मुझे छात्रवृत्ति के लिए एक अमेरिकन विश्वविद्यालय में आवेदन करना था। यदि मैं चुना गया तो मुझे नौकरी छोड़कर सब कुछ बेचकर छात्रवृत्ति का छात्र बनकर 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र में रहना होगा। जैसे परीक्षाएं पहली चुनौती थी, 3 साल की लंबी तैयारी के बावजूद बहुत से ना और कुछ हाँ सबसे पहले कि मेरी विश्वविद्यालय में दाखिला होता। मुझे यदि हाँ और मैं फोन का कॉल 3 साल के बाद मैं एक व्यक्ति ने किया जो कि छात्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार था। उसने कहा, कार्लस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि तुम इस साल पहले 3 में हो और इस बार केवल 1 स्थान है। बुरी खबर यह है कि पहला उम्मीदवार किसी विशेष का, दूसरा उम्मीदवार किसी और विशेष महत्वपूर्ण पुत्र है और वो तुम हो। मैंने जल्द ही जवाब दिया और मैं उसका पुत्र हूँ। खुशी से धरती के कुल निश्चित करने के तत्व नहीं थे और मुझे उस साल स्वीकार कर लिया गया। हम शक्तिशाली परमेश्वर के बच्चे हैं, वह हमारा पिता है, हमें प्रेम करता है और हमारे लिए उसके पास योजना है। हम इस जीवन में सिर्फ अपना समय बर्बाद करने, ढूंढने के लिए या मरने के लिए नहीं आए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े और अपने सामर्थ्य को प्राप्त करें। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन के शब्दों में, तुम में से हर एक शादीशुदा या अकेला उम्र के बावजूद अवसर प्राप्त करता है सीखने और बढ़ने की। अपने ज्ञान को फैलाओ, दोनों दिमागी और आत्मिक, पूरी उच्चता तक ईश्वरीय सामर्थ्य से। सिद्धांत नंबर 3, हमें यह स्वप्न उन लोगों के साथ बांटना है जिन्हें हम प्रेम करते हैं। लेही ने कुछ कोशिश की लेमन और लेमन के उस बदलाव की महत्वता को समझने की जैसे वह ला सके। हकीकत में वह अपने पिता के दिव्य दर्शन को ना बांट सके, जिसके कारण वह सारी यात्रा पर बड़बड़ाते रहे। दूसरे हाथ में नफी शब्द प्रभु को तलाशता वहाँ वही देखने के लिए जो उसके पिता ने देखा, और ऐसा हुआ। मैं नफी ने उस बातों पर सुना पश्चाप जो पिता ने दिव्य दर्शन में देखी थी। मुझे नफी ने इच्छा की कि मैं भी पवित्र आत्मा की शक्ति इन बातों को देख और सुन सकूं। इस दिव्य दर्शन के साथ नफी न सिर्फ अपनी यात्रा की चुनौतियों पर काबू पा सका, परंतु परिवार का नेतृत्व भी किया। ये बहुत संभव है कि हम एक मार्ग लेने का निश्चय करते हैं, वह लोग जिन्हें हम प्रेम करते हैं और कुछ हमारे साथ इन चुनाव के परिणाम भी बांटते हैं। आदर्श रूप से वह देखेंगे जो हम देखते हैं।
Na experiência pessoal que tenho usado como ilustração.
अपने निजी अनुभव में मैंने स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, मुझे बिना शक अपनी पत्नी के साथ की जरूरत थी। बच्चे अभी भी छोटे थे और कुछ नहीं कह सकते थे, परंतु मेरी पत्नी का साथ अवश्य था। मुझे याद है पहले मोनिका और मैंने ध्यान से योजना में बदलाव के बारे में वार्तालाप किया, जब तक कि उसको आरामदायक टाल लगा और वह भी प्रतिबद्ध हुई। इस स्वप्न ने उसे सिर्फ साथ के लिए ही नहीं, परंतु उसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना सफलता का। मैं जानता हूँ कि प्रभु के पास हमारे इस जीवन के लिए एक योजना है। वह हमें जानता है, वह जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है। क्योंकि चीजें अच्छी चल रही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि समय समय पर हमें विचार नहीं करना चाहिए कि कुछ बेहतर हो सकता है। यदि हम निरंतर ऐसे ही जिए जैसे कि हम जी रहे हैं, क्या वादा की गई आशीषें पूरी होंगी। परमेश्वर जीवित है, हम हमारा हमारे पिता हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह जीवित है और मैं जानता हूँ कि उसके प्रायश्चित के बलिदान से हम शक्ति पा सकते हैं अपने चुनौतियों को। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
The choir and congregation will now stand and join in singing Count Your Blessings. After the singing,
खड़े होकर गाएंगी Count Your Blessings. गीत गाए जाने के बाद 70 के एल्डर एल एफ पैकर और हेगो एम मार्टिनेज को सुनेंगे। एल्डर मार्टिनेज अपने संदेश स्पेनिश भाषा में देंगे। उनकी टिप्पणी के बाद गायक मंडली आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड गाएगी। संगीत गाए जाने के बाद हम 70 के एल्डर एलरी एस कैचर को सुनेंगे। उनके बाद प्रेरितों के परिषद के एल्डर डेविड ए बेडनार हमें हमारा संबोधन करेंगे।
This is the 184th.
यह अंतिम दिनों के संतों के गिरजे का 184वां अर्धवार्षिक महासम्मेलन है।
As a young 12-year-old scout,
एक वर्षीय युवक स्काउट मैंने एक बहुत इच्छा का उपहार पाया जो कि संकलन था मेरे स्काउटिंग उपकरण में। वह एक कुल्हाड़ी थी भारी चमड़े के कवर के साथ। अगली रात भर की पदयात्रा पर हम कैंप अंधेरे के बाद पहुंचे। रास्ते की भारी बर्फबारी से गीले और ठंडे। मैं सिर्फ सोच रहा था एक विशाल आग को बनाने का। मैं तुरंत ही काम पर चला अपनी नई कुल्हाड़ी से एक गिरे हुए पेड़ को काटने। जैसे ही मैंने काटा मैं निराश हो गया क्योंकि वह अच्छी तरह से नहीं कट रहा था। निराश में मैंने और मेहनत की। निराशापूर्ण मैं कैंप पर कुछ लकड़ी के टुकड़ों के साथ वापस आ गया। किसी और की आग की रोशनी से मैंने समस्या को ढूंढ लिया। मैंने कुल्हाड़ी का कवर नहीं हटाया था। मैं रिपोर्ट कर सकता था परंतु भारी चमड़े का कवर छोटे टुकड़ों में कट गया था। मेरे काटने के ध्यान में मैं दूसरी महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान न दे सका। जैसे कि हम उत्कर्ष की ओर कार्य करते हैं हमें कार्य करना चाहिए उन सब आवश्यकताओं पर और ध्यान केवल एक दो आवश्यकताओं पर या दूसरी असंबंधी वस्तुओं पर केंद्रित नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के राज्य की खोज हमें खुशी आनंद की ओर ले जाते हैं। यदि आवश्यकता हो तो हमें बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ नियमित साधनों कम दर्द और थक। बहुत दिन न हुए बहन पैकर और मैंने कई विदेशी यात्रा की। हमने अपने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार किए। हमने सभी टीके चिकित्सा वीजा और स्टैंप्स भी प्रय कर लिए। पहुंचने पर हमारे दस्तावेज और सब आवश्यकताएं पूरी हुई। अंदर जाने दिया गया। उत्कर्ष के लिए योग्य होना भी एक दूसरे देश में जाने की तैयारी है। हमें में से एक को अभी प्राप्त करना है अपना आत्मिक पासपोर्ट। हम कोई भी आवश्यकता नहीं बनाते, परंतु व्यक्तिगत रूप से इन सब को हमें पूरा करना है। उद्धार की योजना में सिद्धांत, कानून, आज्ञाएं और धर्म विधियां हैं जो उत्कर्ष की योग्य बनाती है। फिर यीशु मसीह के बलिदान से सभी मानव जाति बचाई जाएगी। गिरजाघर मदद करता है, पर हमारे लिए कर नहीं सकता। उत्कर्ष के लिए योग्य होना हमारे जीवन भर जुस्तजू बन जाती है। मसीह ने गिरजे को हमारी मदद के लिए संगठित किया। हमने पुरुषों को बुलाया है जिसे हम सामर्थ्य भविष्यवक्ता दिव्यदर्शी और प्रकटीकरणकर्ता का देते हैं, जो गिरजे का मार्ग मानते हैं और लोगों को सिखाते हैं। प्रथम अध्यक्षता और 12 की परिषद एक जैसी शक्ति और अधिकार रखते हैं जिनमें वरिष्ठ प्रेरित को गिरजे का अध्यक्ष बनाया जाता है। 70 को सहायक बनाने के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि निर्देशों की हस्त किताब में समझाया गया है, इन उद्देश्यों को पूरा करने में व्यक्तिगत रूप से हम मदद करते हैं। परिवार को उत्कर्ष के लिए योग्य करके गिरजाघर ध्यान रखता है।
Families qualify for exaltation. The church focuses on divinely appointed responsibilities. These include helping members.
इसमें शामिल है सदस्य की मदद करना, यीशु मसीह के सुसमाचार को जीने में, इज़राइल को इकट्ठा करना प्रचारक कार्य से, गरीब और जरूरतमंद की परवाह करना और मृतकों का उद्धार, मंदिरों को बना के और धर्म विधियों को संपादित कर। यह 4 केंद्र और बाकी सारे कानून, आज्ञाएं और धर्म विधियां आवश्यक हैं और नहीं हैं। यीशु मसीह के प्रायश्चित से और यह सब करने से हम आत्मिक पासपोर्टों पर आवश्यक स्टैंप को लगा सकते हैं। इस सम्मेलन के दौरान हमें सिखाया जा सकता है उन परिवर्तनों के लिए जो हम सबको बेहतर तैयार करेंगे। परिवार केंद्र है उद्धार की योजना का, और इसलिए शायद इसे खुशी की महान योजना भी कहा जाता है। अध्यक्ष बॉयड के पैकर ने कहा है, गिरजे की गतिविधि का सर्वश्रेष्ठ अंत एक पुरुष और उसकी पत्नी और उसके बच्चों का घर पर खुश रहना है। अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू ने कहा, हमारी सफलता का व्यक्तिगत रूप से या एक गिरजा घर से इससे निश्चित यो होगी कि हम कितनी ईमानदारी से सुसमाचार को अपने घर में जिएंगे। पारिवारिक इतिहास और मंदिर के कार्य सुसमाचार घर पर जीने का भाग है। यह एक परिवार की गतिविधि होनी चाहिए गिरजे की गतिविधि की अपेक्षा। पारिवारिक इतिहास और मंदिर के कार्य पर नई रूप से महत्व दिया जा सकता है प्रथम अध्यक्षता और 12 की परिषद के द्वारा। आपका जवाब इस महत्व को बढ़ाएगा आपके व्यक्तिगत रूप को और परिवार के आनंद को, खुशी को। सिद्धांत और अनुबंध में हम पढ़ते हैं, खुद का महान दिन पास है, चलो हम इसलिए इस गिरजे घर के एक और लोगों का होकर और अंतिम दिन के संत हो गए प्रभु को एक सच्ची भेंट दें और इसके पवित्र मंदिर में प्रस्तुत करें। एक किताब जिसमें मृतकों का रिकॉर्ड हो जो कि योग्य हो सबसे स्वीकार करने के। यह किताब को तैयार किया जाएगा उन रिकॉर्ड से जो गिरजाघर के परिवार के पेड़ के डेटाबैक्स में है। मैं जांचता हूं और जोड़ता हूं रिकॉर्ड्स को इस डेटाबेस में, क्योंकि मैं इस पुस्तक में उन सबके नाम चाहता हूं जिसे मैं प्रेम करता हूं। क्या आप नहीं? सिद्धांत और अनुबंध में अध्याय 128 में पढ़ते हैं कि हम अपने पूर्वजों के बिना पूर्ण नहीं हो सकते और ना ही वह हमारे बिना पूर्ण हो सकते हैं। पारिवारिक इतिहास वंशावली नियमों नामों तरीकों और जगहों से अधिक है। यह एक केंद्र है से अधिकार है हमारे बीते कल का। पारिवारिक इतिहास में हम अपना आज भी शामिल करते हैं जो हमारा अपना इतिहास बनाता है। इनमें हमारा कल भी शामिल है जैसा कि हम अपने इतिहास को अपने वंशों से बनाते हैं। एक युवा माँ उदाहरण के तौर से अपने परिवार की कहानियाँ और तस्वीरें अपने बच्चों के साथ बांटती है। वह अपना पारिवारिक इतिहास का कार्य भी कर रही है, जैसे कि प्रभु भोज का सेवन, सभाओं में जाना, धर्मशास्त्र को पढ़ना और निजी प्रार्थना। पारिवारिक इतिहास और मंदिर के कार्य नियमित रूप से हमारी निजी भक्ति का इतिहास होना चाहिए। हमारे युवा का जवाब और दूसरी भविष्यवक्ता के निमंत्रण को प्रेरित और काम को साबित करती है कि यह काम और सदस्य को करना चाहिए किसी भी उम्र के। जैसा कि एल्डर केब्यूटिन एल कुक ने व्यक्त किया कि हमारे पास सिद्धांत मंदिर और तकनीक है। आज कार्य करना बहुत आसान है, यह सीमित है कुछ सदस्यों द्वारा प्राथमिकता बनाने में। यह काम अभी भी समस्या और बलिदान मांगता है, परंतु सब कर सकते हैं और आज काफी आसानी से कुछ वर्षों पहले की अपेक्षा। सदस्यों की मदद करने के लिए गिरजे के रिकॉर्ड इकट्ठा किए हैं और साधन दिए हैं कि बहुत सा काम अपने घर पर या वार्ड की इमारतों में और मंदिरों में हो सके। बहुत सी रुकावटें हट गई हैं जो कि आपकी पहले की धारणा हो, आज यह अलग है। किंतु एक रुकावट गिरजाघर नहीं हटा सकता, वह है व्यक्तिगत हिचक कार्य करने की। इसमें सिर्फ एक निर्णय और थोड़े का आवश्यकता है। इसमें अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा समय लगाकर कार्य में प्रसन्नता लाता है। निर्णय लेने का एक कदम ले, दूसरे को सीखने और पूछने का और मदद करने का। जो नाम आप ढूंढते हैं और मंदिर लेकर जाते हैं वे रिकॉर्ड बनाते हैं किताब के। सदस्य की आकस्मिक भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। हमने पाया है कि गिरजाघर के कुछ सदस्य ही अक्सर भाग लेते हैं अपने परिवार के लिए मंदिर की धर्म विधियां करने में। यह हमारी प्राथमिकता में बदलाव को बुलावा देता है। बदलाव से मत लड़ो, इसका अंगीकार करो। बदलाव ही आनंद की महान योजना है। यह कार्य करना है गिरजा के, परंतु हमारे मृत जन और अपने लिए, हमें और हमारे मरे हुए पूर्वजों को आत्मिक पासपोर्टों पर स्टैंप की आवश्यकता है। हमारे परिवारों का साथ जोड़ना सिर्फ मंदिरों में मुहर बंद धर्म विधियों के द्वारा हो सकता है। कदम बहुत सादे हैं। सिर्फ एक ढूंढो और मंदिर लेकर जाओ। समय के साथ आप दूसरों की भी मदद करोगे इसे करने में। कुछ अपवाद के साथ हर एक इसे कर सकता है। उनके लिए वास्तविक आशीषें हैं जो इस कार्य को करते हैं। बहुत से माता पिता और अध्यक्ष चिंतित हैं संसार की परिस्थितियों को लेकर और इसका असर परिवारों और युवा पर होते हैं। एल्डर बेटनर ने वादा किया, मैं निमंत्रण देता हूँ गिरजा के युवा लोगों को एलाइजा की आत्मा से सीखने और अनुभव करने को। मैं वादा बढ़ते हुए विरोधी के प्रभाव से इसकी रक्षा की जाएगी। जैसा कि आप इस पवित्र कार्य को प्रेम करते हैं, भाग लेते हैं, युवा स्थिति और जीवन भर आपको सुरक्षित रखा जाएगा। भाइयों और बहनों, यह समय है अपनी कुल्हाड़ियों से ढक्कन हटाने का और काम पर जाने का। हमें बलिदान नहीं करना चाहिए अपनी या हमारे परिवार की उत्कर्ष को कुछ कम महत्वपूर्ण रुचि के लिए। यह कार्य परमेश्वर का है, सदस्य और न सदस्य द्वारा करना, युवा और बूढ़े, पुरुष या स्त्री। मैं समाप्त करता हूँ गीत नंबर में लिखी हुई बात से एक शब्द बदलते हुए। उठो ओ परमेश्वर के संतो, कुछ काम वस्तुओं से करते हैं और मन और आत्मा और दिमाग और शक्ति राजाओं के राजा की सेवा करना। यीशु मसीह राजा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
En la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos
días. यीशु मसीह का प्रेम हमारा मार्गदर्शक होता है। यदि हम उसकी जिनको जरूरत में जागरूक होते हैं, हम किसी भी तरह से सहायता कर सकते हैं। अंतिम दिनों के संतों के वह जो कुछ में सेवा करते हैं अच्छे हैं कुछ करने के लिए, वह जो कुछ ना करने की सेवा करते हैं वह किसी भी चीज़ के लिए अच्छे नहीं होते। इन शब्दों को अपने अपने दिलों में और दिमाग में रखने की जरूरत है। सेवा करने के मार्गदर्शन की खोज में मैंने स्मरण पर संतोष पाया कि उद्धारकर्ता हर किसी पर और परिवारों पर ध्यान लगाता है। उसका प्रेम और हर किसी पर कोमलता से ध्यान देने ने मुझे सिखाया था कि वह स्वर्गीय पिता के प्रत्येक बहुत कीमती बच्चे को पहचानता है और कि वह हमारे लिए जरूरी है। सुरक्षित करने में कि हर किसी की सेवा करनी है और यीशु मसीह के सुसमाचार द्वारा सामर्थ पाना है। धर्मशास्त्रों में हम पढ़ते हैं याद रखें, परमेश्वर की निगाह में आत्मा का योग बहुत बड़ा है और यदि ऐसा है तो तुम अपने सारे दिन में परिश्रम करना चाहिए और लाओ उसे बचाओ एक को आत्मा को मेरे पास लाओ। कितना बड़ा तुम्हारा आनंद होगा उसके साथ मेरे पिता के राज्य में। प्रत्येक आत्मा परमेश्वर के लिए योग्य है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और हमारे पास उसके जैसा बनाने का सौभाग्य है। यीशु मसीह का प्रेम हमारा मार्गदर्शक होगा यदि हम उनकी जिनकी मदद करना चाहते हैं की जरूरतों से किसी भी तरह से परिचित हों। हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें मार्ग दिखलाती हैं और इसी तरह से हमारी व्यक्तिगत सेवा शुरू होगी। जरूरतों को खोजें तब उनकी देखभाल करें। जैसे बहन लिंडा के बर्टन सहायता संस्था की जनरल अध्यक्ष कहती हैं, पहले देखो फिर सेवा करो। अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन इस नियम के एक महान उदाहरण है। 2005 की जनवरी में वह प्रेटर रिको में प्रोहिता मार्गदर्शन सम्मेलन का प्रेसाइडिंग कर रहे थे, तब उन्होंने प्रदर्शित किया कि कैसे उद्धारकर्ता और उसके सेवकों ने व्यक्तिगत सेवा के द्वारा सेवा दी थी। उस अद्भुत सभा के समाप्ति पर अध्यक्ष मॉन्सन ने सारे पुरोहित मार्गदर्शक उपस्थिति में थे से मिलना आरम्भ किया। अचानक उन्होंने ध्यान दिया कि उनमें से एक बड़ी अपने आप से दूर सब कुछ देख रहा था। अध्यक्ष मॉन्सन समूह से दूर उस भाई की ओर चलकर गए और उसे बात की। भावुकता के साथ जोस आजयास ने उन्हें बतलाया, यह चमत्कार था कि उसने उनसे आग्रह किया था और एक प्रार्थना का जवाब था कि उसने और उसकी पत्नी यूलेंडा ने सभा से पूर्ण की थी। उसने अध्यक्ष मॉन्सन को बताया कि उसकी बेटी बहुत बुरी हालत में है और कि उसके पास उसकी पत्नी का एक पत्र है कि जिसे वह अध्यक्ष मॉन्सन को देना चाहती थी। पर जेस ने अपनी पत्नी से कहा कि यह असंभव है क्योंकि अध्यक्ष मॉन्सन बहुत व्यस्त होंगे। अध्यक्ष मॉन्सन ने कहानी सुनी और पत्र के लिए पूछा था, जिसे उन्होंने शांति से पढ़ा। तब उन्होंने उसे अपनी सूट की जेब में रख लिया और भाई जेस से बोले कि वह उस अनुरोध पर ध्यान देंगे। इस तरह से उस परिवार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके सेवक के द्वारा छुपाए। मैं उद्धारकर्ता के अच्छे सामरी के दृष्टांत के शब्दों पर जो हम पढ़ लागू होता है विश्वास करता हूँ। जाओ तू भी ऐसा ही कर। 1998 सितंबर पर हरिकिन जॉर्ज ने प्रोचोरैको पर प्रहार किया। बहुत नुकसान हुआ था। बहन मार्टिन, हमारे 5 बच्चे और मैं उन तेज आंधी और उन हॉरिकॉन के तीव्र गति की हवाएं से घर में रुक बच पाए थे। इसलिए हम 3 सप्ताह बिना खुले पानी और बिना बिजली के रहे थे। जब पानी खत्म होने लगा, प्रयत्न करना मुश्किल होता जा रहा था। मैं भूल नहीं सकता हूं उन भाइयों को जिन्होंने उस बहुमूल्य तत्व उपलब्ध करके सेवा की, ना ही मैं उस बहन को भूल पाऊंगा, बहनों को भी जिन्होंने हमारी सेवा प्रेम पर भर तरीकों से की थी। जर्मन कॉलन हमारे घर एक बड़े से प्लास्टिक के डब्बा पिकअप ट्रक के साथ आए थे। उसने बताया कि वह इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि उनके शब्दों में, मैं जानता हूं कि आपके पास छोटे बच्चे हैं जिनको पानी की आवश्यकता है। कुछ दिनों के बाद भाई नोएल मनोज ने हारमोनियस गोमस तीन बड़े पानी के टैंक ट्रक में लाए। वे अचानक से हमारे घर में आए और उपलब्ध पानी को बोतलों में भर दिया। पीने के पानी के साथ हमारे पड़ोसियों को भी उनको भरने को आमंत्रित किया। हमारी प्रार्थना का उत्तर उनकी व्यक्तिगत सेवा द्वारा दिया गया। उन तीन भाइयों का चेहरा प्रेम का प्रतिबिंब था जो यीशु मसीह का हमारे लिए था, और उनकी सेवा, दूसरे शब्दों में उनकी व्यक्तिगत सेवा, ने पीने के पानी से कहीं अधिक हमारे जीवनों के लिए किया। परमेश्वर के बेटे या बेटियां जानते हैं कि लोगों को उनमें रुचि और ध्यान देकर पाया उन्होंने कल्याण की विशेषता जानना था। मैं आपको गवाही देता हूं कि स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं। इस कारण वे हमें देते हैं जिसकी हमें जरूरत है, ताकि हमारे पास अपनी पवित्र सौभाग्य को पाने का अवसर होगा। उस रास्ते के साथ वह लोगों को रखता है जो हमारी मदद करेंगे। फिर जैसे हम उसके हाथ के औजार बन जाते हैं, हम सेवा करने में सामर्थ होते हैं और उनकी सहायता करते हैं जिन्हें वह प्रकटीकरण के द्वारा दिखाता है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के सभी बच्चों तक पहुंच जाते हैं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को एकत्रित करता है। वह ऐसा करेगा एक के बाद एक, जैसे वे अपने आचरण की आजादी का अच्छा प्रयोग करते हैं। उसके सेवकों की वाणी सुनने और उसके सेवाओं को ग्रहण करने के बाद, तब वे उसकी आवाज को पहचानने लगेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। ऐसी व्यक्तिगत सेवाएं संपूर्ण है हमारी बपतिस्मे के अनुबंधों का पालन करने में। उसी तरह यीशु मसीह का एक शिष्य होने का एक अच्छा उदाहरण होना हमारे पत्र के दूसरों से परिचय होता है, जिनके साथ हम उसका सुसमाचार बांट सकते हैं। जैसे हम अपना मुंह खोलकर और पुनर्स्थापित यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटें, हम उसके अंदर चरवाहे उसकी भेड़ों को हरी हरी घास से और बकरियों को उसका पोषण करते हैं, हम कमजोर और साधारण मनुष्य को पकड़ने वाले बनते हैं। हमारी सेवा और व्यक्तिगत सेवा इस जिंदा धरती पर ही नहीं सीमित है, हम मुर्दों के लिए भी काम कर सकते हैं। उनके लिए जो आत्मा संसार में रहते हैं और उनके लिए जिन्हें उनकी नाश्वर जीवन में यीशु मसीह का सुसमाचार की बचाने की धर्म विधियों को प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था। हम दैनिकी भी रखकर और अपने और हमारे परिवार इतिहास को लिखकर भी जीवित के हृदयों को जीवित की ओर मोड़ते हैं, वैसे ही जीवित के हृदयों को उनके पूर्वजों की ओर मोड़ते हैं। ये सब हमारे परिवारों से जुड़ने के बाद बारे में है, वंश से वंश अनंत बंधनों के साथ। ऐसा हम करते हैं, हम उद्धारकर्ता के सियोन का पर्वत बन जाते हैं। हमारे पास उसके हाथों के औजार बनने के विशेष अवसर हैं। हम अपने विवाहों में, अपने परिवारों में, अपने मित्रों के साथ और अपने सह पाठियों के साथ कर सकते हैं। यही हमारी यीशु मसीह के सच्चे शिष्यों के रूप में व्यक्तिगत सेवा है। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियां को बाईं ओर खड़ा करेगा। जब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधी ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, मेरे साथ किया। हमें भी ऐसा करना चाहिए। यह मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से है, आमीन।
Brothers and sisters, the decisions we make in this life,
अपने चुनाव का
This point was brought home some 5 years ago in a way that almost cost me dearly. We were traveling with family and friends in the south of Oman.
परिवार और मित्रों के साथ दक्षिण ओमान की यात्रा कर रहे थे. हमने हिंदू महासागर के पास के समुद्र किनारे विश्राम करने का निर्णय किया. हमारे वहां पहुंचते ही हमारी वर्षीय बेटी नेरी ने पूछा कि वह तैरने के लिए जा सकती है, जो उसे रेत जैसा लगा. कटीला पानी देखते हुए मैंने उससे कहा कि मैं पहले जाऊंगा, यह सोचकर कि वहां खतरनाक पानी का प्रभाव हो सकता है. कुछ देर तैरने के बाद मैंने अपनी पत्नी को बुलाया पूछते हुए क्या मैं रेत के पास था. उसका उत्तर था कि तुम उससे आगे जा चुके हो. जानकारी के बिना मैं फंस चुका था एक आसान जल क्षेत्र में जहां मुझे समुन्द्र अपनी ओर तेजी से खींच रहा था. मैं था कि मैं क्या करूं. एक ही चीज को मैं करने की सोच रहा था, वह थी कि वापस मुड़कर किनारे की तरफ तैरने की, और वास्तव में गलती करनी थी. मैंने असहाय महसूस किया. शक्तियां मेरे नियंत्रण के बाहर मुझे समुद्र में खींच रही थी. जो मामले को और भी बुरा बना रही थी वह थी कि मेरी पत्नी मेरे निर्णय पर विश्वास करके मेरे पीछे आ गई थी. भाइयों और बहनों, मैंने सोचा कि बहुत अधिक संभावना है कि मैं जीवित ना रहूं, और मैं क्योंकि अपने निर्णय से अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण भी होऊंगा. बहुत प्रयास के बाद, और मैं जिससे विश्वास करता हूं, एक स्वर्गीय हस्तक्षेप ने हमारे पैरों से किसी तरह रेत को छुआ और हम सुरक्षित चलकर वापस अपने दोस्तों और बेटियों के पास आए. ऐसे बहुत से प्रभाव हमारी पृथ्वी के जीवन में हैं. कुछ सुरक्षित हैं और कुछ नहीं. अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू ने सिखाया कि हमारे जीवन में शक्तिशाली शक्तियां हैं, वैसे जैसे कि महासागर में ना दिखने वाले प्रभाव. यह शक्तियां वास्तविक हैं. हम इन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए. मुझे अपने आप को एक प्रवाह के बारे में बताता हूँ, एक ईश्वरीय प्रवाह जो मेरे जीवन में एक आशीष बन गया है. मैं गिरजाघर में एक परिवर्तित हूँ. मेरे परिवर्तन से पहले मेरे जीवन का उद्देश्य सीन करना, और इसलिए मैं हाईस्कूल के बाद यूरोप अपनी इच्छा को पूरा करने चला गया. कुछ महीनों बाद जो एक आदर्श जीवन लग रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मुझे छोड़ देना चाहिए. मुझे उस समय उस भावना का सोर्स समझ नहीं आया, परंतु मैंने उसका अनुसरण करने का चुनाव किया. मैं पहुंचा प्रोवो यूटा कुछ अच्छे मित्रों के साथ जो मेरी तरह सदस्य थे अलग विश्वास के. प्रोवो में मैं उन लोगों से मिला जो मेरे जीवन में बहुत अलग जीवन जी रहे थे. मैंने उनके प्रति खिंचाव महसूस किया, पता नहीं क्यों. शुरुआत में मैंने इन भावनाओं को रोका, परंतु जल्द ही मैंने शांति और आराम को पाया जिसको मैंने कभी नहीं जाना था. मैंने अलग प्रभाव को ग्रहण किया, एक जो कि मुझे समझ में आया स्नेही स्वर्गीय पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह की. मेरा बपतिस्मा मेरे मित्रों के साथ 1972 में हुआ. ये नया प्रभाव जिसके मैंने अनुसरण करने का चुनाव किया, यीशु मसीह का सुसमाचार, निर्देश और मेरे जीवन को अर्थ दिया. परंतु यह अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था. मेरे लिए सब कुछ नया था. कुछ समय पर मुझे खोया और उलझन भी महसूस हुई. प्रश्न और चुनौतियों मेरे मित्रों और परिवार दोनों के द्वारा पूछे गए. मेरे पास एक चुनाव था करने के लिए. उनके कुछ प्रश्नों ने शक और अस्थिरता बनाई. यह एक महत्वपूर्ण चुनाव था. मैं जवाबों के लिए कहां जाता. बहुत से मुझे मेरी माँ की गलतियों के विषय में विश्वास दिलाना चाहते थे. जल क्षेत्र निश्चित ही मुझे शांति प्रभाव से, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय सूत्र था, खुशी का था. मैंने साफ तौर से सिद्धांत विरोध हर चीज में होगा और खुद के लिए कार्य करने की महत्वता और दूसरों के लिए अपने चुनाव को त्याग नहीं करना सीखा. मैंने अपने आप से पूछा, मैं क्यों अस्वीकार करूं उसको जिसको मैंने सारा सुख दिया है. जैसे कि प्रभु ने ओलिवर कार्डरी को याद दिलाया, क्या मैंने इस विषय के अनुसार शांति से तुम्हारा स्मरण नहीं किया. मेरा अनुभव समान था, इसलिए मैं पलटा और फिर भी वचनबद्धता के साथ एक स्नेही स्वर्गीय पिता के, धर्मशास्त्र के और विश्वास योग्य मित्रों के. अब भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं थे. मैं कैसे उन अनिश्चितता का संबोधन करता जो बना दी गई थी, इसके बजाय उन्हें बर्बाद करने देता अपने जीवन में आई हुई शांति और खुशी को. मैंने चुना उन्हें कुछ समय के लिए, विश्वास करते हुए कि परमेश्वर अपने समय में सब बातों को दिखा देगा. मैंने उसकी कथन में जो उसकी उन्होंने भविष्यवक्ता जोसेफ को कही, देखो तुम छोटे बच्चे हो और सब कुछ नहीं सह सकते, तुम बढ़ो उसकी दया और ज्ञान के सच से. मैंने चुना उसे ना छोड़ने का जो मैं जानता था कि सच है, और उसका अनुसरण करने का जो एक अनजाना और संदिग्ध प्रभाव था, एक संभावित जल क्षेत्र.
जैसे कि एन एल्डर टैनर ने कहा, मैंने सीखा कितना बुद्धिमानी और अच्छा है मनुष्य के लिए सुसमाचार के सादे सच को अपनाना और विश्वास के साथ उन वस्तुओं को अपनाना जिन्हें वह नहीं समझता। क्या इसका मतलब है कि ईमानदारी से पूछताछ की कोई जगह नहीं है? उस युवा लड़के से पूछो जिसने आश्रय लिया एक सेकंड ग्रोव में यह जानने के लिए कि उसे कौन से गुर्जरघर में सम्मिलित होना चाहिए। सिद्धांत और अनुबंध को अपने हाथ में पकड़े और जाने कि जो भी कुछ प्रकट हुआ वह एक प्रेरित दस्तावेज है उसके जवाब में, जो कि सच की नम्र खोज है। जैसे जोसेफ ने पाया, यदि तुम में से कोई भी ज्ञान को अपने परमेश्वर से पूछने दो जो हर मनुष्य को और उसे भी दिया जाएगा। प्रश्न यह नहीं है कोई जगह ईमानदारी की है वास्तविक पूछताछ की, परंतु मैं कहां जाऊं?
The question is not is there room for honest sincere inquiry but rather
परंतु मैं कहां जाऊं? क्या मैं समझदार होऊंगा उस सच को पकड़ने में जिसे मैं जानता हूँ? सच है बावजूद इसके कि मेरे पास कुछ भी प्रश्न हो, मैं साक्षी देता हूँ कि ईश्वरीय सूत्र है एक जो सब कुछ जानता है अंत से शुरुआत तक, सब कुछ उसके सामने है। धर्मशास्त्र साक्षी देते हैं कि वह कुटिल रस्तों पर नहीं चलता और न ही वह उस जगह से हटता है जो उसने कहा है। इस नश्वर यात्रा में हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे चुनाव केवल हमें प्रभावित करते हैं। हाल ही में एक युवक मेरे घर आया, उसमें एक अच्छी आत्मा थी, परंतु मैंने महसूस किया कि वह गिरजाघर की क्रिया में पूरी तरह से योगदान नहीं दे रहा था। उसने मुझे बताया कि वह एक सुसमाचार केंद्र के घर में पाला बड़ा था जहां उसके पिता उसकी माता के प्रति विश्वासघाती हुए, परिणाम तलाक हुआ और उसने प्रभावित भी किया उसके भाई बहनों को गिरजाघर से प्रश्न करने को और दूर जाने को। मेरा मन दुखी हुआ जैसे कि मैंने जो अब एक युवा पिता है प्रभावित था अपने पिता के चुनाव से और इन कीमती आत्माओं का पोषण यीशु मसीह के समाचार के बाहर कर रहा था। और एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, एक समय में गिरजाघर का विश्वसनीय सदस्य के पास बहुत प्रश्न थे सिद्धांत को लेकर। स्वर्गीय पिता से जवाब पूछने के बजाय उसने चुना केवल निर्भर रहा एक धर्म निरपेक्ष सूत्र पर मार्गदर्शन के लिए। उसका मन गलत रास्ते पर मुड़ गया, जैसे कि वह छाटने जो लगा मनुष्य के समान को। उसका घमंड शायद आनंद से बड़ा कुछ समय के लिए, परंतु उसे स्वर्ग की शक्ति से काट दिया गया। सच ढूंढने के बजाय वह अपनी गवाही खो बैठा और बहुत सारे अपने परिवार के सदस्यों को साथ ले गया। ये दो पुरुष अनदेखे जल क्षेत्र में फंस गए और बहुत सारों को अपने साथ ले गए। इसके विपरीत मैं सोचता हूँ लारू और लुई मिलर का, मेरे पत्नी के माता पिता, जिनके पास कभी भी सांसारिक संबंधी पूर्ण न थी, न केवल अपने बच्चों को पुनः स्थापित सुसमाचार के सिद्धांतों को पढ़ाया परंतु उसे अपने जीवन के हर दिन जिया। ऐसा करने से उन्होंने अपनी नस्ल को सुसमाचार के फलों से और अनंत जीवन की आशा से आशीषित किया। अपने घर में उन्होंने पौरोहित्य को आदर करने के अभ्यास को स्थापित किया जहां प्रेम और शांति बहुत थी और सुसमाचार के सिद्धांत मार्गदर्शक थे उनके जीवनों में। लुईस और लारू साथ साथ दर्शाया क्या होता है जीवन को जीने का अभ्यास यीशु मसीह के पीछे। उनके बच्चों ने साफ तरह से देखा कि जीवन का कौन सा प्रभाव शांति और खुशी ला सकता है और उसका चुनाव भी उन्होंने किया। जैसा कि अध्यक्ष किम्बल ने सिखाया, यदि हम बनाएं एक शक्तिशाली बहता हुआ स्थिर प्रभाव, अपना लक्ष्य रखें सच्चे जीवन की ओर, हम और हमारे बच्चे आगे उठाए बढ़ाए जाएंगे बावजूद इसके कि विपरीत आंधियां हो, कठिनाई, निराशा और प्रलोभन की। क्या हमारे चुनाव महत्व रखते हैं? क्या वे केवल हमें प्रभावित करते हैं? क्या हमने दृढ़ता से अपना अनंत प्रभाव पुनः स्थापित सुसमाचार की स्थापित किया है? समय दर समय मेरे पास एक रूप है जो मुझे डराता है। क्या होता हो सितंबर के दिन हिंदू महासागर के पास के समुद्र किनारे विश्राम करते हुए मैं अपनी बेटी से कहा, नेली हाँ जाओ तैरो रेत के पास, और यदि उसने मेरा उदाहरण का अनुसरण किया होता वह कभी भी तैरकर वापस न आ पाती। क्या होता यदि जीवन भर यह जानते हुए जीना होता कि मेरे उदाहरण के प्रतिफल उसे समुद्र के जल क्षेत्र में खींच लिया कभी न वापस आने के लिए? जो प्रभाव हमें चुनते हैं क्या उनका अनुसरण करना आवश्यक है? क्या हमारे उदाहरण महत्व रखते हैं? हमें स्वर्गीय पिता से आशीषित किया है आकाशीय पवित्र आत्मा की भेंट से हमारे चुनाव को मार्गदर्शक करने के लिए। उसने हमसे वादा किया है कि जैसे कि मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस हमारे चुनाव का से प्रश्न पूछते हुए, क्या मेरे निर्णय दृढ़ता से यीशु मसीह के सुसमाचार की उपजाऊ मिट्टी में स्थापित है? मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि जो व्यस्तता की जरूरत हो बनाओ, चाहे बड़े या छोटे, स्वर्गीय पिता की योजना की अनंत आशीषें अपने अपने प्रियजनों के लिए सुनिश्चित करो। मैं साक्षी देता हूँ यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। मैं साक्षी देता हूँ कि जो अनुबंध हम उसके साथ बनाते हैं वे धार्मिक और पवित्र हैं। हमें कभी भी धार्मिक वस्तु के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम हमेशा ईमानदार हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
My message is directed specifically.
मेरा संदेश विशेषकर उन लोगों के लिए है जो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के सदस्य नहीं हैं। मैं उन प्रश्नों पर बोलूंगा जो आप में से बहुत के पास हो सकते हैं। क्यों लैटर-डे सेंट्स आपको ये बताने के लिए उत्साहित रहते हैं कि वे किस पर विश्वास करते हैं और आपको उनके गिरजे के बारे में सिखाने के लिए निमंत्रण देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की आत्मा मुझे प्रभावकारी ढंग से बोलने में मदद करेगी और आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। यीशु मसीह के समर्पित शिष्य हमेशा परिश्रमी प्रचारक रहे हैं और हमेशा रहेंगे। एक प्रचारक मसीह का ऐसा अनुयायी है जो उसे मुक्तिदाता रूप में प्रमाणित करता है और उसके सुसमाचार की सच्चाइयों की घोषणा करता है। यीशु मसीह का गिरजा हमेशा प्रचारक गिरजा था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। उद्धारकर्ता के गिरजे के सदस्यों ने प्रभु के प्रेरितों द्वारा दी इस दिव्य जिम्मेदारी को पूरा करने के कर्तव्य में मदद करना स्वीकार किया है, जैसा कि नए नियम में लिखा है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। लैटर-डे सेंट सभी राष्ट्रों के लोगों को प्रभु यीशु मसीह और उसके पुनर्स्थापित गिरजे के विषय में सिखाने की इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो गिरजा प्राचीन काल में उद्धारकर्ता ने स्थापित किया था उसी गिरजे को उसके द्वारा अंतिम दिनों में पृथ्वी पर फिर से स्थापित किया गया है। उसके सुसमाचार के सिद्धांत, नियम, पुरोहित अधिकार, विधियों और अनुबंधों उसके गिरजे में आज भी पाए जाते हैं। जब हम आपको अपने गिरजे घर में आने के लिए पूरे समय के प्रचार को सिखाने के लिए निमंत्रण देते हैं, हम आपको कुछ वस्तु बेचने का प्रयास नहीं करते हैं। गिरजे के सदस्य के रूप में हमें स्वर्गीय प्रतियोगिता में कोई पुरस्कार या बोनस नहीं मिलता। हम मात्र अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और अति महत्वपूर्ण, हम आपके ऊपर बल नहीं डालते कि जो हम विश्वास करते हैं आप भी वैसा करो। हम आपको यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार की सच्चाइयां सुनने के लिए निमंत्रण देते हैं ताकि आप अध्ययन, मनन, प्रार्थना कर और समय जान सके कि जो बातें हम बांट रहे हैं वह सच हैं। आप में से कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही से यीशु में विश्वास रखता हूं और उसकी शिक्षाओं पर चलता हूं। यह मुझे पक्का नहीं पता कि परमेश्वर का अस्तित्व है। हमारा निमंत्रण आपके धार्मिक परंपराओं को या जीवन के अनुभव को कम करना नहीं है। जो कुछ सच, अच्छा और प्रशंसा के योग्य आपके पास है उसे अपने साथ लाएं, हमारे संदेश की जांच करें, ठीक जैसे यीशु ने अपने दो शिष्यों को कहा था, आओ और देखो। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आओ और देखो क्या यीशु मसीह का पुनर्स्थापित सुसमाचार उसे बढ़ाता और समृद्ध बनाता है जिसे आप पहले से जानते हैं। अवश्य ही हम इस संदेश को सभी देश, जाति, भाषा और लोगों के बीच ले जाने को अपना दायित्व महसूस करते हैं और निश्चित रूप से यही सब कुछ हम 88,000 से अधिक पूरे समय के प्रचारकों के साथ मिलकर 150 विश्व के स्वतंत्र देशों के बीच में कर रहे हैं। ये असाधारण स्त्री और पुरुष गिरजे के सदस्यों को यीशु मसीह के अनंत समाचार की घोषणा करने की इस दिव्य नियुक्ति में मदद करते हैं।
But our eagerness to declare this message.
लेकिन इस संदेश की घोषणा करने की हमारी उत्सुकता मात्र आत्मिक दायित्व के कारण नहीं है. असल में यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार को आपके साथ बांटने की हमारी इच्छा इस बात का प्रतीक है कि यह सच्चाइयां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. मैं विश्वास करता हूं कि कई साल पहले मेरी पत्नी और मुझे अपने बेटों में से दो के साथ हुए अनुभव से मैं अच्छी तरह समझा सकता हूं कि हम क्यों अपने विश्वासों को बांटने के लिए इतना उतावले होते हैं. एक शाम सुजन और मैं हमारे घर की खिड़की पर खड़े थे और अपने दो छोटे बेटों को बाहर खेलता देख रहे थे. अपने खेल के दौरान छोटा बेटा को संयोग से थोड़ी सी चोट लग गई. हमें जल्दी ही पता चल गया कि चोट गंभीर नहीं थी और हमने निश्चय किया कि हम तुरंत कोई सहायता नहीं देंगे. हम देखना चाहते थे जो हमारे पारिवारिक चर्चाओं में भाई को प्यार करना सिखाया था उसे उन्होंने सीखा था. जो कुछ हुआ वह दिलचस्प और शिक्षाप्रद दोनों था. बड़े भाई ने छोटे को दिलासा दी और ध्यान से घर तक वापस ले आया. सुजन और मैं किचन के पास खड़े हो गए ताकि हम देख सके आगे क्या होता है और हम तब तक तुरंत बीच में आने के लिए तैयार थे जब तक कुछ गंभीर घटना होने की संभावना ना हो. बड़े भाई ने किचन के सिंक के पास कुर्सी खींची. मैं कुर्सी पर चढ़ा, अपने भाई को कुर्सी पर आने में मदद की, पानी चला दिया और अपने छोटे भाई की आगे खींची. वहां पर बहुत सारा बर्तन साफ करने का साबुन डाला. उसने बहुत ध्यान से मिट्टी को साफ किया जितनी आराम से वह कर सकता था. वह सब करने में छोटे भाई की प्रक्रिया को केवल धर्मशास्त्र की भाषा में सही तरीके से समझाया जा सकता है और उनके चिल्लाने और रोने और विलाप करने और दांत पीसने का कारण होगा.
And oh, brothers and sisters, did that little boy howl?
और छोटा भाई दर्द के कारण जोर से चिल्लाया. जब धोने का काम समाप्त हो गया, भाव को बहुत ध्यान से तौलिए के साथ सुखाया गया. अनंता चीखना चिल्लाना बंद हो गया था. इसके बाद बड़ा भाई किचन मेज पर चढ़ा, एक कैबिनेट को खोला और दवाई की ट्यूब निकाली. यद्यपि छोटे भाई की खरोच बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन बड़े भाई ने लगभग पूरी दवाई उसकी सारी बाह पर लगा दी. चिल्लाना फिर शुरू नहीं हुआ क्योंकि छोटे भाई को चोट पर दवाई लगाना साबुन से धोने से अधिक पसंद आ रहा था. बड़ा भाई कैबिनेट में फिर गया जहाँ उसे दवाई मिली थी और उसे पट्टियों का डब्बा मिला. फिर उसने छोटे भाई की पूरी बांह कोहनी से कलाई तक सारी पट्टी से लपेट दी. इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के बाद दोनों भाई मुस्कुराते और खुश चेहरे के साथ कुर्सी से नीचे कूदे. पूछे पूरे किचन में दवाई और पट्टियों के कवर फैले पड़े थे. जो कुछ इसके बाद हुआ वह बहुत महत्वपूर्ण था. चोट लगे भाई ने बाकी बची पट्टियां लगभग खाली हो चुकी दवाइयों के ट्यूब को उठाया और बाहर वापस खेलने चला गया. उसने जल्दी से अपने दोस्तों को खोजा और अपने भावों पर दवाई की पट्टी बनाया. सुजन और मैं दोनों उसकी प्रतिक्रिया की इस निष्कपटता उत्साह और तीव्रता से आश्चर्यचकित थे. छोटे भाई ने ऐसा क्यों किया. कृपया ध्यान दें, वह तुरंत और प्राकृतिक रूप से अपने मित्रों को वही आराम देना चाहता था जिसने उसने अपनी चोट के समय पाया था. उस छोटे लड़के को प्रतिक्रिया करने के लिए विवश करने या उकसाने की जरूरत नहीं थी. बांटने की उसकी इच्छा व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम थी. हम में से बहुत से व्यस्क बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जब हमें ऐसा उपचार या दवा मिलती जो हमारे दर्द को दूर करती है जिससे हम काफी समय से तड़प रहे थे, या हम ऐसी सलाह प्राप्त करते हैं जो चुनौतियां का साहस और धैर्य सामना करने के योग्य बनती हैं. अन्य लोगों के साथ उन वस्तुओं को बांटना जो हमारे लिए उपयोगी है या जिनसे हमें मदद मिली है बिल्कुल भी अनोखी बात नहीं है। यही बात विशेषकर महान आत्मिक महत्व की और परिणाम की बातों पर जाहिर होता है। उदाहरण के लिए धर्मशास्त्र के एक संस्करण जिसे मार्मन की पुस्तक के रूप में जानते हैं में मिलता है, जिससे लेहाई के नाम के एक प्राचीन भविष्यवक्ता के सपने का विवरण है। लेहाई के सपने का केंद्र जीवन का वृक्ष है, जो कि परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, जो कि सभी अन्य वस्तुओं से अधिक वशनीय है और आत्मा को सबसे अधिक आनंदित करने वाला है। लेहाई समझाता है, और ऐसा हुआ कि मैं वहां गया और उस वृक्ष का फल खाया और मुझे लगा कि यह अत्यधिक मीठा था। इतना मीठा फल मैंने पहले कभी नहीं चखा था। हाँ, और मैंने ये भी देखा कि वह फल सफेद था, इतना सफेद कि उतनी सफेदी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और जब मैं उसके फल को खा रहा था, तब मेरी आत्मा महान आनंद से परिपूर्ण हो गई थी। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मेरा परिवार भी इसे खाए, क्योंकि मैं जानता था कि यह अन्य सब फलों से अधिक वांछनीय है। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के प्रेम का सबसे महान उदाहरण नाश्वर यीशु मसीह की सेविकाई, प्राश्चित बलिदान और पुनरुत्थान है। वृक्ष के फल को उद्धारकर्ता के प्राश्चित के आशीषों के रूप में भी लिया जा सकता है। वृक्ष का फल खाने और महान आनंद का अनुभव करने के बाद लेहाई की तुरंत प्रतिक्रिया अपने परिवार के साथ इसे बांटने की थी। इस प्रकार जब वह मसीह में परिवर्तित, वह लोगों के प्रति प्रेम और सेवा में भी परिवर्तित हुआ। मॉर्मन की पुस्तक की अन्य मुख्य घटना उसे बताती है जो इनोस नामक व्यक्ति के साथ हुआ था, जब उसकी सच्ची और याचना भरी प्रार्थना को परमेश्वर द्वारा सुना और जवाब दिया गया। वह बताता है, और मेरी आत्मा को भूख लगी और मैंने अपने बनाने वाले के सामने घुटने टेके और मैंने अपनी पूरी शक्ति से प्रार्थना और अपनी आत्मा के लिए विनती की और मैं सारा दिन उसे पुकारता रहा। हाँ, और जब रात आई मैं फिर भी इतनी जोर से पुकारता रहा कि वह स्वर्ग तक पहुंच गई। और मैंने एक वाणी को यह कहते सुना, इनोस तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और तुम आशीषित किए जाओगे। और मैं इनोस जानता था कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मेरे अपराध धुल गए थे। और मैंने कहा, प्रभु ये कैसे हुआ? और उसने मुझसे कहा, मसीह में तुम्हारे प्रेम के कारण, जिसे तुमने पहले कभी ना तो सुना है और ना ही देखा है, और बहुत साल बीत गए जाने पर भी वे अपने आप को शरीर में प्रकट करेगा, इसलिए जाओ, तुम्हारे विशेष ने तुम्हें चंगा किया। अब ऐसा हुआ कि जब मैंने इन वचनों को सुना तो मैं अपने भाइयों निफाओं के कल्याण की इच्छा करने लगा, इसलिए मैंने उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख अपनी संपूर्ण आत्मा को समर्पित किया। जब इनोस प्रभु की और अपने संपूर्ण हृदय से परिवर्तित हुआ तो उसके परिवार, मित्रों, साथियों के प्रति उसका विचार भी बदल गया। इन दो घटनाओं से हम जो अनंत पाठ सीखते हैं कि दूसरों की सच्ची और सही सेवा देने से पहले यीशु मसीह के प्राश्चित को अपने व्यक्तिगत जीवनों में अनुभव करना जरूरी है, जो कि मात्र बाहें फैलाकर मदद करने से बहुत अधिक है। लेहाई, इनोस और हमारे छोटे बेटे की कहानी जो मैंने सुनाई थी, हमने चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के सदस्य के रूप में आत्मिक अनिश्चितता और पाप के संबंधित पीड़ा को महसूस किया है। हमने शुद्धिकरण, आत्म शांति, आत्मिक चंगाई और नवीनीकरण को और उस मार्गदर्शन को जो केवल उद्धारकर्ता के सुसमाचार के नियमों को सीखकर और जीने से मिलता है, यह अनुभव किया है। यीशु मसीह का प्राश्चित शुद्ध और स्वच्छ होने के लिए साबुन और आत्मिक घावों को चंगा और आपराधिक भाव को दूर करने के लिए मरहम और सुरक्षा उपलब्ध कराता है, जो कि हमें अच्छे और बुरे दोनों समय में हमें विश्वसनीय बने रहने में मदद करता है। परिवार के सदस्य और मित्रों को जो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के सदस्य नहीं है, मैंने मूलभूत कारणों को समझाने का प्रयास किया है कि हम क्यों प्रचारक हैं। संसार में संपूर्ण सच्चाई के अस्तित्व का निरंतर तिरस्कार होता है और इन सिद्धांतों को नकारा जाता है जो संपूर्ण रूप से सच है। भविष्य में सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकेंगे और पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही वास्तव में इकलौता अनंत पिता का पुत्र है।
As members of his church,
उसके गिरजे के सदस्य के रूप में मैं गवाही देते हैं वह जीवित है और उसके गिरजे को इस अंतिम दिनों में परिपूर्णता के साथ पुनर्स्थापित किया गया है। आपके लिए हमारा निमंत्रण हमारे संदेश को सिखाना और इसकी जांच करना हमारे जीवनों में यीशु मसीह के सुसमाचार के सकारात्मक प्रभावों के कारण है। कभी कभी अपने प्रयासों में हम अनाड़ी या असंभव या कठोर प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा आपके साथ उन सच्चाई को बांटना है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु के प्रेरितों में से एक रूप है, मैं अपनी आत्मा की संपूर्ण शक्ति से उसकी दिव्यता और वास्तविकता की गवाही देता हूँ और मैं आपको आओ और देखो का निमंत्रण यीशु मसीह के पवित्र नाम से देता हूँ। आमीन।
At the conclusion of the conference, we express
इस सम्मेलन के समापन पर हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इन सेवाओं की तैयारी में परिश्रम से अपना सहयोग दिया है। हम सब वार्ताकारों को जिन्होंने हमारा संबोधन किया और जिन्होंने सुंदर संगीत उपलब्ध कराया आभार प्रकट करते हैं। अब हमारे अपने प्रिय अध्यक्ष थॉमस स्वेंसन को सुनने का सौभाग्य होगा। उनकी टिप्पणी के पश्चात गायन मंडली इस सभा का समापन वी एवर प्रे फॉर दी गीत गाने के द्वारा की जाएगी। अंत में 70 भाई जॉन एस टेनर द्वारा समापन की जाएगी और इसके पश्चात सम्मेलन स्थगित हो जाती है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने प्रेरणादायक संदेशों के दो शानदार दिनों का अनुभव किया। हमारे हृदयों को छुआ गया और हमारे विश्वास मजबूत हुए जब हमने उस आत्मा को ग्रहण किया जो इन सम्मेलन सत्रों के दौरान उपस्थित थी। इनके समापन पर हम अपने स्वर्गीय पिता को हमें उसकी बहुत सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सुंदर संगीत के द्वारा उत्साहित और प्रेरित हुए जो सत्रों के दौरान उपलब्ध कराया गया। प्रार्थनाएं हमें स्वर्ग की निकटता में ले गई। मैं उन भाइयों का समर्पण गिरजे की ओर से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो इस सम्मेलन में सेवा निवृत्त किए गए हैं। हमें उनकी याद आएगी। प्रभु के कार्य में उनके योगदान अभूतपूर्व रहे और ये आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि हम अपने दिलों में अतीत से थोड़ा बेहतर बनने के संकल्प के साथ अपने घरों को लौटेंगे। मैं आशा करता हूँ हम थोड़ा अधिक दयालु और विचारशील होंगे। हम सहायता के लिए आगे बढ़े ना केवल अपने साथी सदस्यों के लिए बल्कि उनके लिए भी जो हमारे धर्म के नहीं हैं। कुछ हैं जो प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करते हैं। हम अपनी सहानुभूति के साथ साथ सहायता का हाथ उन तक पहुंचाएं। जब एक दूसरे की देखभाल करते हैं तो हम आशीषित होंगे। मैं आशा करता हूँ हम वृद्ध और जो अशक्त हैं उन्हें समर्पण रखेंगे। जब हम उनसे मिलने के लिए समय निकालते हैं तो वे जानेंगे कि उनसे प्रेम किया जाता है और उनके ऐसा मित्र हैं। मैं आशा करता हूं कि हम इस आज्ञा का पालन करेंगे कि हम कमजोर की मदद में मायूस को धैर्य और असमर्थ को मजबूती देंगे। मैं आशा करता हूं कि हम सभी समय सभी स्थानों पर उचित कार्य करने का प्रयास करते हैं, ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोग बनेंगे। मैं आशा करता हूं कि हम मसीह के विश्वास अन्यायी और धार्मिकता के उदाहरण बनकर जगत की ज्योति बनेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए की गई आपकी प्रार्थनाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मुझे शक्ति देती है और ऊपर उठाती है जब मैं अपने समर्पण संपूर्ण हृदय और ताकत से परमेश्वर की इच्छा को करने का प्रयास और उसकी सेवा और आपकी सेवा करता हूँ। जब हम इस सम्मेलन से जाते हैं मैं आप सबों पर स्वर्ग की आशीषों का आह्वान करता हूँ, आप जो अपने घरों के से दूर हैं, सुरक्षित घर लौटें और सब कुछ सामान्य पाएं। मैं आशा करता हूँ कि हम सब उन सच्चाइयों पर मनन करेंगे जो हमने सुनी है, और वे हमें पहले से अधिक साहसी शिष्य बनने में मदद करें। जब तक हम 6 महीने के अंतराल में फिर से मिलते हैं, तब तक मैं प्रभु के आशीषों को आपके ऊपर और हम सबों के ऊपर होने की मांग करता हूँ, और मैं ऐसा यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के पवित्र नाम में करता हूँ। आमीन।
Our beloved Father in heaven.
हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम अपने भविष्यवक्ता के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और उनके जीवन को दीर्घायु दें, ताकि वो जीवन पर चर्च के प्रति आपका हम आपके बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जो आत्मा हमने यहाँ आपसे कॉन्फ्रेंस में महसूस करी, हमने बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ हमने सीखा है उसको अपने जीवन में लागू करें। आपसे मदद की सहायता चाहते हैं, ताकि हम उन बातों को अपने जीवन में उतार सके जो हमने यहाँ सीखी हैं। स्वर्गीय पितर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुसमाचार के पुनर्स्थापन के लिए और सुसमाचार के जीसस क्राइस्ट के सुसमाचार के लिए और पुनरुत्थान की निश्चितता के लिए और उस परिवर्तन और उस बदलने के और हम सबको इस महान उपहार को समझने की शक्ति दे, ताकि हम आपके प्रिय पुत्र के द्वारा यीशु मसीह के नाम में आमीन।
दिस हैज बीन अ ब्रॉडकास्ट ऑफ द 184th
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 184वां अर्धवार्षिक महासम्मेलन था। इस गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ताओं ने संबोधन किया। संगीत मरवन टबल कायक मंडली द्वारा दिया गया। यह प्रसारण बोनाविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। इसका बिना अनुमति नकल या कार्यक्रम की नकल या रिकॉर्डिंग या प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।